from the Conference Center at Temple Square.
Το εξωτερικό και Temple Square και στο μπέμ κέντρο σε για αντίμ δίνω και στον τόκα η σου μουσική κυρίζει κα εξω μπεάσι βα γενβόλ σκαμμύραν χέ. Είσμε κυρίζει και γενβόλ αντικαρνιό ο γενβόλ πατήτ καλκαρνιό σε τσουνή βακτά σε μπόδαν καβέγγε ο εις σεκτό κασανγκίτ Μόμον Μαντοπ Λαϊκ Μουλί τώρα χώγα. ये प्रसारण मनीवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम का नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है
President Dieter F. Udorf,
अध्यक्ष डीटर एफ उबडॉफ गिर्जे के प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth.
भाइयों और बहनों अंतिम दिनों के स्तंभों के यीशु मसीह के गिरजाघर के 182वें वार्षिक जनरल सम्मेलन का इस दोपहर बाद के पांचवें और अंतिम सत्र का आपको स्वागत है अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन जो कि सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं हम विश्वभर के सभी को शुभकामनाएं और आशीष देते हैं जो इन कार्यक्रम को रेडियो टेलीविजन इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण से द्वारा भाग ले रहे हैं इस सत्र का संगीत मंडप गायक मंडली द्वारा मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में होगा बानी गुडलिफ और लिंडा मार्गरेट ऑर्गन बजाएंगी गायक मंडली ने ऑन दिस डे ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस गाकर इस सभा का आरंभ करेगी फिर सत्र के एल्डर डब्ल्यू क्रेग ज़ुविक प्रार्थना करेंगे उसके बाद गायक मंडली कम ऑन टू जीसस गाएगी
our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम साथ में आकर आपको प्यार देते हैं और अपने विश्वास को साथ में धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए. आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता आपके आशीर्वाद के लिए. हमें सीख सकते हैं आपके प्रॉफिट्स द्वारा. प्रार्थना करते हैं कि हम ध्यान से सुने और आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए दुनिया भर के घरों में और चर्चों में और इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में, कि पवित्र आत्मा हमारे दिल को छुए और हम बदलाव ला सकें अपने आप में और विनम्र बने और अपने जीवन को सही दिशा दें. और इस ईस्टर के समय में हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के प्रायश्चित के लिए. हमारा विश्वास बढ़ रहा है इस दिन और जो बातें हमने सीखी हैं उसको हम अपने जीवन में ढालें और अपने आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के जीवन को आशीर्वाद देने के लिए, उनके ज्ञान के लिए. धन्यवाद देते हैं उनके पवित्र उदाहरण के लिए. आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे अभी गान में और शब्द में और हमारा विश्वास बढ़े. इसके लिए हम विनम्रता में प्रार्थना करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में. आमेन.
We will now be pleased to hear from Elders
Pivitton ki parishad se Elder M. Russell, Tom Perry aur Elder M. Russell Barnett se sunenge. Unke baad 70 ke Elder O. Vincent Hallock bolenge.
I have a very good friend.
मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो मुझे एक नई जनरल कॉन्फ्रेंस में एक टाई हर एक टाई भेजता है उसकी पसंद बहुत अच्छी है आपको नहीं लगता मेरे नौजवान मित्र के पास कुछ कठिनाइयां हैं और वे उसके कुछ हद तक सीमित करते हैं लेकिन दूसरी तरफ वह बहुत ही बेहतरीन है उदाहरण के लिए प्रचारक के रूप में उसका साहस मुजाया के बेटों के समान है मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका विश्वास सरलता उसे अद्भुत रूप से मजबूत करती है स्कॉट के विचार में यह कल्पनीय है कि हर कोई द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स का सदस्य नहीं है और कि हर किसी ने मॉर्मन की पुस्तक नहीं पढ़ी है और उनके पास इसकी सच्चाई की गवाही नहीं है मैं आपको स्कॉट के जीवन की एक घटना बताता हूं जब वह अपने भाई से मिलने अकेले पहली बार हवाई जहाज से गया था उसके पास बैठे व्यक्ति ने स्कॉट की बातचीत को संयोग से सुना जो उसने अपने बगल वाले से की थी हेलो मेरा नाम स्कॉट है आपका नाम क्या है उसके साथ बैठी व्यक्ति ने अपना नाम बताया आप क्या करते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ बहुत अच्छा आप कहाँ रहते हैं लॉस वेगस में हमारा वहाँ एक मंदिर है क्या आप जानते हैं मॉर्मन टेम्पल कहाँ है हाँ यह एक सुंदर भवन है क्या आप मॉर्मन हैं नहीं आपको होना चाहिए यह एक महान धर्म है क्या आपने मॉर्मन की पुस्तक पढ़ी है नहीं आपको पढ़ना चाहिए यह एक महान पुस्तक है मैं संपूर्ण हृदय से स्कॉट के साथ हूँ मॉर्मन की पुस्तक एक महान पुस्तक मॉर्मन की पुस्तक के परिचय पृष्ठ में लिखे भविष्यवक्ता जो स्मिथ के शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते हैं मैंने भाइयों से कहा कि मॉर्मन की पुस्तक पृथ्वी पर किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक सही है और हमारे धर्म की आधारशिला है और किसी अन्य पुस्तक के मुकाबले मनुष्य किसी शिक्षाओं का पालन करके परमेश्वर के अधिक निकट पहुंचेंगे इस वर्ष संडे स्कूल कक्षाओं में हम मॉर्मन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जब हम तैयार करते हैं और भाग लेते हैं काश हम भी स्कॉट की सी उदाहरण के द्वारा उत्साहित होकर इस विशेष धर्मशास्त्र के लिए अपने प्रेम के दूसरों के साथ बांटें जो हमारे धर्म के नहीं हैं मॉर्मन की पुस्तक का प्रभावशाली विषय फर्स्ट नफी के पहले अध्याय के अंतिम आयत में व्यक्ति यह क्या है नफी लिखता है लेकिन देखो मैं नफी तुम्हें यह दिखाऊंगा कि प्रभु की दया उन सभी के ऊपर होती है जिनको वह चुनते हैं क्योंकि उनके विश्वास उन्हें सुरक्षा की शक्ति प्रदान कर शक्तिशाली कर देता है मैं बोलना चाहता हूँ कैसे मॉर्मन की पुस्तक जो कि प्रभु की दया है इन अंतिम दिनों के लिए सुरक्षित रखी गई है हमें शुद्ध और बहुत सही मसीह के सिद्धांत के तरीके सिखाती कर मुक्ति दिलाती है मॉर्मन की पुस्तक की बहुत सी कहानियां मुक्ति की कहानियां हैं लेही का अपने परिवार के साथ निर्जन प्रदेश में जाना जेरूसलम के विनाश से मुक्ति थी यारदियों की कहानी मुक्ति की कहानी है जैसे मुलिटिक मुलाकाटियों की कहानी है छोटे अल्मा को पाप से मुक्ति मिली थी ईमान की योहदियों को युद्ध में मुक्ति मिली थी नफी और लेही को कैदी से मुक्ति मिली थी मुक्ति की विषय पर पूरा मॉर्मन की पुस्तक में दिखाई देता है मॉर्मन की पुस्तक में दो कहानियां हैं जो इसी के समान हैं और महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं पहले मुजाया की पुस्तक के 20वें अध्याय से शुरू होती है यहाँ हम नफी के देश में रहने वाले राजा लिम्ही के विषय में सीखते हैं लेमेनाइट्स ने लेमी के लोगों के विरुद्ध युद्ध किया था. इस युद्ध का परिणाम हुआ यह हुआ कि लेमेनाइट राजा को उसके लोगों पर शासन करने दिया, लेकिन उन्हें उनका गुलाम बनाया. यह एक बहुत अशांतिजनक अशांति थी. जब लेमी के लोग लेमेनाइट्स के दुर्व्यवहार से तंग हो गए, उन्होंने राजा को उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए राजी किया. वे तीन बार हारे, उनके ऊपर बहुत बोझ डाल दिया गया. अंततः उन्होंने अपने आप को विनम्र किया और प्रभु के बहुत अधिक पुकार कि वह उन्हें मुक्ति दिलाए. अध्याय 21 के 15 आयत प्रभु के उत्तर को बताती है. उनके पापों के कारण प्रभु की पुकार कर सुनने में देर कर रहे थे, फिर भी प्रभु ने उनकी पुकार को सुना और वह लेमेनाइट्स के हृदयों को मल करने लगे, जिसे वे उनके बोझ को हल्का करने लगे. फिर भी प्रभु ने उनके समय गुलामी को मुक्त करना अच्छा नहीं समझा. प्रभु ने उनकी पुकार सुनने में देर की थी, क्यों? उनके पापों के कारण. दूसरी कहानी खुद कुछ हद तक वैसी है, लेकिन फर्क भी है. यह घटना मुजाया 24 में लिखी है. अल्मा और उसके लोग हीलम के देश में बस गए. जब लेमेनाइट्स की सेना देश की सीमा तक पहुंची, वे मिले और उन्होंने एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला. जल्द ही लेमेनाइट्स के मार्गदर्शकों ने अल्मा के लोगों पर उनकी इच्छा लादनी शुरू कर दी थी और उनके ऊपर बहुत भारी बोझ डाल दिया. 13 आयत में हम पढ़ते हैं, उनके कष्टों में प्रभु की वाणी यह कहते हुए उन्हें सुनाई दी, अपने सिरों को उठाओ और दिलासा ग्रहण करो, क्योंकि तुमने जो प्रतिज्ञा मुझसे की है वह मैं जानता हूँ, और अपने लोगों से अनुबंध करूँगा और उन्हें दास्ता से मुक्त करूँगा. अल्मा के लोगों को लमनाटियों के हाथों से मुक्ति मिली थी और वह सुरक्षित वापस जेराहमला के लोगों से जाकर मिले थे. अल्मा के लोगों और राजा लिमी के लोगों में क्या अंतर था? स्पष्ट रूप से कई अंतर थे. अल्मा के लोग शांति प्रिय और अधिक धार्मिक थे. उनके बापतिस्मा हो चुका था और प्रभु के साथ अनुबंध किया था. उन्होंने उनके कष्ट शुरू होने से पहले ही अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र किया. इन सब अंतरों से इसे सही और न्यायपूर्ण किया कि प्रभु उन्हें जल्दी चमत्कारी तरीके से उन्हें हाथ से मुक्ति दिलाएं. उन्होंने गुलाम बनाया था. ये धर्मशास्त्र प्रभु की मुक्ति की शक्ति के विषय में सिखाते हैं. यीशु मसीह के जीवन और मिशन के विषय की भविष्यवाणियां हमें उस मुक्ति का वादा करती हैं जो वे हमें देंगे. उसका प्रायश्चित और पुनरुत्थान हम सभी को शारीरिक मृत्यु और छुटकारा से छुटकारा दिलाता है, और यदि हम प्रायश्चित करते हैं, आत्मिक मृत्यु से छुटकारा दिलाता है. इसके साथ अनंतता जीवन की आशीष लाते हैं. प्रायश्चित और पुनरुत्थान के वादे शारीरिक और आत्मिक मृत्यु से मुक्त के बाद मूसा को परमेश्वर द्वारा बताए गया थे, जब उन्होंने कहा था, क्योंकि देखो मनुष्य के जीवन में आत्म और अंधता जीवन लाना यह मेरा काम और मेरी महिमा है. पवित्र धर्मशास्त्र में सुंदरता और राज्य भरोसा के संदर्भ में वे लेख जो हमें कई सदियों से हमारे जीवन के अनंततम मूल्य और आदर्शों में मार्गदर्शन करती आ रही हैं. वे घोषणा करते हैं बाइबल की शिक्षाएं झूठी हैं और स्वामी की शिक्षाएं पुरानी हो चुकी हैं. वे ऊंचे आवाज में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आदर्श चुनने की स्वतंत्रता है. वे धर्मशास्त्र और भविष्यवक्ताओं के शब्दों की शिक्षा के विपरीत विश्वासियों और अधिकारियों को बदलना चाहते हैं। बाइबल की बताएं सिद्धांत में दूसरा गवाह जोड़ कर मॉर्मन की पुस्तक में बताए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के मिशन का लेख होना यह एक बहुत बड़ी आशीष है। संसार में बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक दोनों होना क्यों आवश्यक है? मैं विश्वास करता हूँ इसका जवाब फर्स्ट नफी के 30वें अध्याय में मिलती है। नफी लिखते हैं, यह अंतिम अभिलेख उन्हें तुम्हें जातियों के बीच देखा है, उस प्रथम सच्चाई की स्थापना करेगा जो जन्म के 12 प्रेरितों हैं और स्पष्ट मूल्य रूप से बताते हैं कि घोषणा करेगा जिन्हें उनसे दूर कर दिया था और कि सभी मनुष्य को उसके पास आना चाहिए वरना वे बचाए नहीं जा सकते। न तो बाइबल न ही मॉर्मन की पुस्तक अपने आप में संपूर्ण है, दोनों में मसीह का सारा और पूरा सिद्धांत सीखने और सीखने के लिए जरूरी है। एक की जरूरत दूसरे की जरूरत को कम नहीं करती। बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक दोनों हमारे उद्धार और उत्कर्ष के लिए जरूरी हैं। इसका अध्यक्ष एज्रा टेफ्ट बेंसन ने प्रभावशाली रूप से सिखाया था, जब एक साथ उपयोग की जाती हैं बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक झूठ सिद्धांतों को गलत साबित करती हैं। मैं दो कहानियां बताकर समाप्त करूंगा, एक बाइबल से दूसरी मॉर्मन की पुस्तक से, यह दिखाने के लिए कि कैसे ये दोनों मिलकर काम करती हैं। इब्राहिम की कहानी ये कसूदियों की कष्टों से मुक्ति मिलती है। वादा किया गया कि उनके वंशों के द्वारा पृथ्वी की सारे राष्ट्र आशीषित होंगे। अपने जीवन में बाद में आने वाली बहुत सी समस्याएं और वे बहुत सारी थीं। उसके लिए इस निर्णय का कारण कई थीं, क्योंकि उसने सीदोम को देखने के लिए अपने तंबू का द्वारा उस ओर किया था। इब्राहिम विश्वासियों के पिता के जीवन का अनुभव भिन्न था। निश्चित रूप से कई चुनौतियां थीं, लेकिन उसका जीवन आशीषित था। हम नहीं जानते कि इब्राहिम का द्वार किस ओर था, लेकिन उत्पत्ति के 13वें अध्याय के अंतिम आयत में एक पक्का संकेत है। इसमें लिखा है, इसके पश्चात अब्राम या इब्राहिम ने अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजर को बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। मैं इस निर्णय पर कैसे पहुंचा? क्योंकि मैं मॉर्मन की पुस्तक की कहानी जानता हूं कि जिसमें राजा बियामिन ने अपने लोगों को अपने संबोधन को सुनने के लिए एकत्रित होने के लिए कहा था। पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षाएं, मैं घोषणा करता हूं कि यीशु ही मसीह है और मॉर्मन की पुस्तक पढ़कर हम उनके नकेट जा सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक यीशु मसीह की अन्य गवाही है। यीशु मसीह के पहली गवाही पुरानी गवाही और नई गवाही या बाइबल है। फिर से आओ हम मॉर्मन की पुस्तक के बारे में मेरे मित्र स्कॉट की व्याख्या को याद करें। यह एक महान पुस्तक है और मैं आपको गवाही देता हूं कि मॉर्मन की पुस्तक की महानता अधिकतर पवित्र बाइबल के साथ इसका यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
Brothers and sisters, according to the scriptures, the Liahona was a round ball of curious
Liahona विशिष्ट कारीगरी का गोल गेंद था जिसमें धुइयां थी जिनसे एक लही के परिवार को निर्जन प्रदेश में राह दिखाती थी मुझे पता है कि लही को उसे दिखने के आश्चर्य हुआ था क्योंकि मुझे जीपीएस यंत्र पहली बार काम करते देखकर खुद आश्चर्य हुआ था मेरी राय में यह आधुनिक समय का विशिष्ट कारीगरी का यंत्र है मुझे विश्वास नहीं होता कि यह छोटा यंत्र मेरे फोन में है और मुझसे बात कर मुझे बता सकता है कि मैं कहां हूं और मुझे किस मंजिल पर कैसे पहुंचने की राह क्या है मेरी पत्नी बाबरा और मेरे लिए यह एक आशीष है बाबरा अब मुझे रोक कर राह नहीं पूछती और मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ हूँ भाइयों और बहनों हमारे पास जीपीएस से भी उत्तम यंत्र उपलब्ध है हर कोई कभी न कभी कुछ हद तक अपनी राह खोता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम फिर से सही मार्ग सुरक्षित लिए जा सकते हैं और उद्धारकर्ता की क्षतिपूर्ति के बलिदान से हम घर लौट सकते हैं खो जाना समाज के साथ साथ व्यक्तियों को भी लागू हो सकता है आज के जमाने में सब संसार अधिकतर भटक चुका है विशेषकर घर के मूल्यों और प्राथमिकताओं के संदर्भ में 100 साल पहले प्रधान जोसेफ एफ स्मिथ ने खुशी को परिवार के साथ जोड़ा था और अपना प्रयासों को वहां केंद्रित करने की सलाह दी थी उन्होंने कहा घर से अलग परे कोई सच्ची खुशी नहीं है सेवा बिना कोई खुशी नहीं सबसे महान सेवा वो है जो घर के एक दिव्य संस्थान की परिवर्तन करती है और पारिवारिक जीवन को बनाए रखती है घर को सुधारने की जरूरत है इस बढ़ते मुक्तिवादी और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में परिवार को सुधारने की जरूरत है एक चौंकाने वाला उदाहरण है यहाँ अमेरिका में विवाह के प्रति बढ़ता अनादर इस साल न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर थी कि अनविवाहित महिलाओं के बच्चों की संख्या ने सीमा पार की थी 30 साल से छोटी महिलाओं में आधा से ज्यादा बच्चों के जन्म विवाह के बाहर हुए हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका में विवाह करने वाले में आधे से ज्यादा तलाक लेते हैं जो विवाहित होते हैं अक्सर विवाहित संबंधों में दूसरे बातों के दखल के कारण मार्ग से भटक जाते हैं उतना ही चिंता की बात है गंभीर और गरीब के बीच बढ़ती दरार परिवार के मूल्यों और जिम्मेदारियों को बचाने का प्रयास करने वाले और न करने वालों के बीच की दरार गणना के अनुसार हम पढ़े लिखे और परिणाम स्वरूप कम आमदनी वाले विवाह और गिरजाक्रिया की संभावना कम है अपराध में शामिल होने की और बिना विवाह बच्चे होने की संभावना भी ज्यादा है ये प्रवृत्ति दुनिया का अन्य देशों में भी परेशानी देती है बहुतों इस सोच के विपरीत समृद्धि और शिक्षा का संबंध पारंपरिक परिवारों और मूल्यों के साथ होने की संभावना ज्यादा है जाहिर है असली सवाल कारण और प्रभाव का है क्या समाज के कुछ लोगों के पास मजबूत मूल्य और परिवार है क्योंकि वे अधिक पढ़े लिखे और संपन्न हैं, या वे अपने मूल्यों और परिवार के कारण पढ़े लिखे और संपन्न हैं? इस विश्वव्यापी गिरिजे में हम जानते हैं कि दूसरा कारण सही है। जब लोग पारिवारिक और सुसमाचार के सिद्धांतों प्रति जिम्मेदारी लेते हैं, वो आत्मिक और आर्थिक बातों में भी सफलता पाते हैं। अवश्य परिवार मजबूत होने पर समाज भी मजबूत होता है। परिवार और मूल्यों के प्रति जिम्मेदारियां इसका मूल कारण है, बाकी सिर्फ प्रभाव है। पर जब जोड़ियां शादी करती हैं, साथ जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी आर्थिक रूप से संपन्न होने की संभावना बढ़ती है। वैवाहिक जीवन में पैदा हुए बच्चे के माता पिता दोनों होते हैं, उनके मौके और व्यावसायिक सफलता की संभावना भी बढ़ती है। जब परिवार साथ काम और खेल करते हैं, आस पड़ोस और समाज की तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, सरकारी सहायता और सुरक्षा जाल की जरूरत घटती है, बुरी खबर यह है कि परिवार के टूटने से सामाजिक और आर्थिक बुराइयां हो रही हैं। पर खुशखबरी यह है कि किसी भी कारण या प्रभाव की तरह उन्हें बदला जा सकता है, कारण हटाने से। असमानता हटाई जा सकती है सही सिद्धांत और मूल्य जीने से। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा परिवार है। यदि हम इस उद्देश्य में मग्न होंगे, हम जिंदगी के हर पहलू में सुधरेंगे और लोगों और गिरजों के रूप में दुनिया भर के लिए एक आदर्श और ज्योति बनेंगे। पर यह संसार में इतना आसान नहीं है, जहां हृदय कई दिशाओं में जुड़ रहे हैं और सारा ग्रह ऐसी तेज गति से दौड़ रहा है, बदल रहा है कि जिसका कभी कल्पना नहीं की हुई थी। कुछ भी ज्यादा देर स्थिर नहीं रहता। स्टाइल, प्रवृत्ति, फैशन और यहाँ तक कि सही और गलत के विचार भी बदलते हैं। पैगंबर यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार गलत को सही और सही को गलत कहा जाता है। आत्मिक दरार चौड़ी होती जा रही है, जैसे दुष्टता अधिक कपटी और चालाक हो रही है, लोगों को चुंबक समान खींचते हुए। उसी प्रकार जैसे सच्चाई और ज्योति का सुसमाचार नैतिकता और भलाई खोजने वाले ईमानदार और आदरणीय लोगों को आकर्षित करता है। हम शायद संख्या में कम हैं, पर गिरजे के सदस्यों के रूप में हम इन बढ़ती दरारों को पार कर सकते हैं। हम यीशु पर केंद्रित सेवा की शक्ति जानते हैं, जो परमेश्वर के बच्चों को एक साथ लाती है, चाहे उनकी आत्मिक या आर्थिक स्थल कैसा भी हो। एक साल पहले प्रथम अध्यक्षों ने हमें कल्याणकारी सेवा की योजना के 75th वर्षगांठ मनाने का अवसर पर हमें एक सेवा के दिन में भाग लेने निमंत्रण दिया था। विश्व भर में हमारे सदस्यों ने लाखों घंटों का योगदान दिया। गिरजा इस अशांत सागर में सुरक्षा का स्थान है। परिवर्तन और विभाजन के जल मंथन में एक लंगर नकी खोजने वाले के लिए एक प्रकाश स्तंभ, नेकी खोजने वाले के लिए एक प्रकाश स्तंभ प्रभु उसके गिरजे के औजार के रूप में इस्तेमाल करता है, विश्व भर फैले उसके बच्चों को सुसमाचार की ओर खींचने। इलाया की आत्मा का प्रभाव, जो असीमित है, एक महान शक्ति है जिससे प्रभु अपने बच्चों को शाश्वत भाग्य के उद्देश्य पूरा करता है। मलकी ने कहा, पवित्र आत्मा माता पिता का मन उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों का मन उनके माता पिता की ओर फिराती है। गिरजा विश्वभर में हृदय परिवर्तन के लिए एक मिसाल और भलाई के लिए उत्प्रेरक है। गिरजे के सदस्य जो मंदिर में विवाह करते हैं और रविवार सभा में निरंतर उपस्थित होते हैं, उनके बीच तलाक दुनिया से कम होता है। उनके परिवार निकट रहते हैं और संपर्क भी ज्यादा होता है। परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है और आम जनसंख्या से ज्यादा लंबे जीवन जीते हैं। हम जरूरतमंद लोगों को प्रति व्यक्ति अधिक आर्थिक सहायता और सेवा देते हैं। उच्च शिक्षा पाने की संभावना भी ज्यादा होती है। मैं ये अहंकार में नहीं बता रहा, पर साबित कर रहा हूँ कि जीवन बेहतर होता है अगर और अधिक खुश जैसे हृदय परिवार की ओर मुड़ते हैं और परिवार सुसमाचार की रोशनी में जीते हैं। तो खोने से बचने के लिए हमें क्या करना है? मेरी सलाह है, प्रथमा एक सूची बनाओ। सब कुछ जो घर के बाहर करते हो वो घरेलू कार्यों के अधीन और उन्हें आधार देने के लिए हो। अध्यक्ष हैरल्ड बिली ने सलाह दी थी कि सबसे महत्वपूर्ण काम तुम घर के दीवारों के भीतर ही करोगे। जिंदगी के लिए योजना बनाओ, प्रार्थना धर्मशास्त्र और पारिवारिक गतिविधियों के लिए वक्त बनाओ। बच्चों को जिम्मेदारियों दो जो उन्हें काम करना सिखाएगी। उन्हें सिखाओ कि सुसमाचार पालने से इंटरनेट माध्यम और वीडियो गेम की गंदगी, अनैतिकता और हिंसा से बचेंगे। वो खोएंगे नहीं अगर वो तैयार होंगे जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरा, हमें कार्य सही क्रम में करने चाहिए। पहले विवाह, फिर परिवार। दुनिया के काफी लोग ये क्रम भूल चुके हैं और सोचते हैं कि उसे बदल या पलटी कर सकते हैं। विश्वास द्वारा अपने भय को भगाओ। परमेश्वर की शक्ति पर मार्गदर्शन देने विश्वास करो। तुम आदमियों जो अभिभावित हो, सावधानी से अपना शाश्वत साथीदार खोजो। जवान आदमियों, अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ ने कहा कि बात याद रहे कि कुंवारापन ये खोखले मन को भाता है क्योंकि उसके साथ सबसे कम जिम्मेदारी जुड़ी है। असली गलती जवान आदमियों की होती है। आयु की स्वतंत्रता उन्हें कर्तव्य और जिम्मेदारी की राह से दूर ले जाती है। उनकी बहनें इसका शिकार होती है। वो विवाह कर लेती अगर वो कर सकती, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को खुशी से स्वीकार कर लेती। और युवतियों को मैं तुमसे और कहूंगा कि तुम इस जिम्मेदारी को अनदेखा न करें। कोई पेशा परिवार के पालन पोषण जितनी संतुष्टि नहीं देगा। जब तुम मेरी आयु के होंगे तुम ये और जानोगी। तीसरा, पतियों और पत्नियों, तुम्हें शादी में बराबर के जोड़ीदार बनना चाहिए। परिवार घोषणा अक्सर पढ़ो और उसे समझो। किसी भी तरह के अनुचित प्रभुत्व से दूर रहो। तुम बच्चों के या जीवन साथी के मालिक नहीं। परमेश्वर हम सभी के पिता हैं और उन्होंने हमें अपने खुद के परिवार का सौभाग्य दिया है, उनके साथ जो पहले उसी के थे, ताकि हम उस जैसे बन पाए। उसके बच्चे होने के नाते हमें घर से उसे प्यार सीखना चाहिए। इसमें हम उनके मदद कर सकते हैं, मांग सकते हैं। हर कोई शादीशुदा या कुंवारा अपने परिवार में खुश रह सकता है।
you may have.
And finally, और आखिर गिरजे को परिवार साधनों को उपयोग करो. बच्चों को पहले भी में बच्चों को पालने में वार्ड की सहायता लो. पुराहित और सहायक मार्गदर्शकों के साथ साथ काम करो और गिरजे के युवा और पारिवारिक योजनाओं का पूरा फायदा उठाओ. अध्यक्ष ली का और एक वाक्यांश याद रहे, गिरजा की वो चिखट है जिस पर हम शाश्वत परिवार बनाते हैं. यदि आप किसी भी कारण व्यक्तिगत रूप से या परिवार के रूप में भटक गए हो, तुम्हें सिर्फ उद्धारकर्ता की लुका अध्याय 15 में शिक्षा की जरूरत है. इसमें उद्धारकर्ता ने गड़बड़ियों के प्रयास के बारे में बताया जो खोई हुई भेड़ ढूंढ रहा था और स्त्री जो खोया सिक्का ढूंढ रही थी और उसका स्वागत के बारे में जो उड़ाऊ पुत्र को दिया गया था. यीशु ने इन दृष्टांत को क्यों सिखाया? वो हमें सिखाना चाहता था कि कोई भी इतना खो नहीं जा सकता कि वो क्षतिपूर्ति और शिक्षा द्वारा लौट नहीं आ सकता. जैसे तुम सुसमाचार और सिद्धांत जीने का प्रयास करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हें निर्देशन देगा. तुम्हारे पास आत्मिक जीपीएस होगा जो तुम्हारा स्थान और राह बताएगा. मैं बयान देता हूँ कि मुक्तिदाता हम सभी से प्यार करता है. वो वादा करता है कि यदि हम उसे मानेंगे, वो हमें सुरक्षित स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में लौटाएगा. ये बयान मैं यीशु मसीह के नाम से देता हूँ. आमीन.
Like all good parents,
सभी अच्छे माता पिता के समान मेरे माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की इच्छा की थी. मेरा पिता गिरजे का सदस्य नहीं था और उस समय की असामान्य परिस्थितियों के कारण मेरा माता पिता निश्चय किया कि मेरे भाई और बहनों और मैं हमारे दक्षिण प्रशांत सागर के अमेरिकी समोआ के अपने घर के छोड़ दें और स्कूल में पढ़ने के लिए संयुक्त राज्य चले जाए. हमसे बिछड़ने का कारण का निर्णय बिछड़ने का निर्णय मेरे माता पिता के लिए मुश्किल था, विशेषकर मेरी माँ के लिए. वो जानती था कि वह पर नया वातावरण में अनजानी चुनौतियाँ होगी. फिर भी विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपनी योजना के अनुसार किया. अपनी अंतिम दिनों के संत माहौल में पालन पोषण के कारण मेरी माँ उपवास और प्रार्थना के सिद्धांत तक से परिचित थे और मेरे माता पिता दोनों ने महसूस किया कि उन्हें अपने बच्चों की मदद के लिए स्वर्ग की आशीष की जरूरत थी. उसी आत्मा ने उन्होंने प्रत्येक सप्ताह एक दिन को हमारे लिए उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया. आपने उनका दर्शन अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य का तैयार करना था. उन्होंने दर्शन का पूरा करने के लिए काम किया और उन्होंने प्रभु के लिए आशीष के पालन के लिए अपने विश्वास का उपयोग किया. उपवास और प्रार्थना के द्वारा उन्हें आश्वासन, दिलासा और शांति मिली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. अपने जीवन को चुनौतियों के बीच हमें कैसे जरूरी कामों को करने का दर्शन प्राप्त कर सकता है जो हमें उद्धारकर्ता के निकट लाती है. दर्शन के बारे में बात करते हुए नीति वचन की पुस्तक में इस सच्चाई सिखाती है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है. यदि हम नष्ट होने बजाय उन्नति करने है तो हम अपने स्वयं के लिए उस दर्शन पाना चाहिए जिसे मसीह हमें देखना चाहते हैं. उद्धारकर्ता ने उन विनम्र मछुआरे जिनको उसने अपने पीछे आने के लिए कहा था, उसने एक दर्शन दिखा था कि वो क्या बन सकते हैं. वो उनकी भलाई और संभावनाओं को जानता था और उसकी उनको बुलाया. शुरू में उन्होंने कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब वो उसके पीछे हो लिए, उन्होंने उसके उदाहरण को देखा, उसकी शिक्षाओं को महसूस किया और उसके चेले बन गए. ऐसा समय भी था जब उसने उसके कुछ चोलों चेलों ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि जो उन्होंने सुना वह कठिन था। वह ये जानते हुए कि दूसरे भी छोड़कर जा सकते थे, यीशु ने बारों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पत्रस का जवाब बताते हैं कि वह कितना बदला गया था और उसने उद्धारकर्ता के दर्शन पा लिया था। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है, उसने जवाब दिया। उसके दर्शन के साथ विश्वासी और श्रद्धालु चले उद्धारकर्ता के चले जाने के बाद कठिन काम को करने के हुए और वो विश्वसमाचार का प्रचार करने के लिए यात्रा करता और गिरजा की स्थापित करते रहे। धर्मशास्त्र में उनको उन्हें उदाहरण है जिन्हें समाचार का दर्शन मिला और उन्होंने दर्शन का पूरा करने के लिए काम किया। भविष्यवक्ता अल्मा ने अपने दर्शन तब पाया जब उसने अविनीति का साहस से राज नूह के सामने शिक्षा और गवाही देते सुना था। उसने अविनीति का शिक्षा के अनुसार काम किया और उन शिक्षाओं को सिखाया जो उसने सीखी थी। कई लोगों की का बपतिस्मा किया जिन्होंने उसने शब्दों पर विश्वास किया था। संतों को पर अत्याचार करते समय प्रेरित पौलुस दमास्कस के मार्ग में परिवर्तित हुआ था। हमारे स्वयं के समय में बहुत से नौजवान युवतियों और परिष्ठ दंपतियों के ने मिशन पर सेवा करने की भविष्यवक्ता की बुलावट का जवाब दिया है। विश्वास और उत्साह के साथ वो अपने घरों को छोड़ते हैं और प्रचारक के रूप में जो कुछ महान भलाई वो कर सकते हैं उसके कारण उन्हें सब कुछ जाना पहचाना लगाता है। जब वो सेवा करने के अपने दर्शन के अनुसार काम करते हैं वो कई लोगों के जीवन को आशीषित करते हैं। इस प्रक्रिया में वो अपने स्वयं को जीवन को बदल देते हैं। पिछली जनरल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष मनसन ने जो सेवा हम एक दूसरे को देते हैं उसके लिए धन्यवाद दिया और उसके बच्चों के यह पृथ्वी पर आशीष देने के लिए परमेश्वर को हाथ होने की हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाया था। उद्धारकर्ता के जाने से पहले समझते हुए कि हम मदद की जरूरत होगी उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसने अपने चेलों को सिखाया था, परंतु सहायकर्ता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा हूँ वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब हम अपने मार्गदर्शक को शिक्षाओं के अनुसार काम करते हैं हम हमारे लिए उद्धारकर्ता के दर्शन की गहरी समझ पाते हैं। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को प्रेरणादायक सलाह प्राप्त की है, उनकी शिक्षाओं के अध्ययन करें और उनकी अपने हृदय में मनन करें। जब अपने जीवन में इन शिक्षाओं के दर्शन को पाने के मदद के लिए पवित्र आत्मा की खोज करते हैं उस दर्शन के साथ उनकी सलाह के अनुसार काम करने में विश्वास का उपाय करें। आपने लिए उनके संदेश का अधिक प्रकाश और ज्ञान के उद्देश्य के साथ धर्मशास्त्र को की खोज और अध्ययन करें, उनका अपने हृदय में मनन करें और उन्हें आपने प्रेरणा देने दी, फिर आपने प्रेरणा के अनुसार काम करें। जैसे हमने परिवार के रूप में सीखते हम उसके अनुसार काम करते हैं जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं। अल्मा ने उपवास और प्रार्थना के करने के विषय में निश्चितता प्राप्ति को उपाय के रूप में कहा था, मैंने कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना की है ताकि अपने बारे में जान सकूं। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम भी हमारे जीवन के चुनौती को सामना कर सकते हैं। हम अपने जीवन में कठिन बातों के अनुभव करते हैं और हमारे दर्शन और उसके अनुसार काम का विश्वास कभी कभी कमजोर करता है। हमने इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अक्सर थकान महसूस करते हैं और कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। हम में से प्रत्येक भिन्न है। मैं विनम्रता के स्वीकार करता हूं कि हमें अपने ध्यान उद्धारकर्ता और शिक्षाओं पर केंद्रित करना चाहिए। उसने पत्रुस याकूब और अहुना और अन्य प्रेरितों में क्या देखा था जिससे वह उन्हें अपने पीछे बुलाने के लिए प्रेरित हुआ था। उनके समान उद्धारकर्ता के पास हम जो बन सकते हैं उसका एक महान दर्शन है। अनंत सुख और महान आनंद लाने के लिए हमें अपना ध्यान उन बातों पर फिर से केंद्रित करना है जो अधिक जरूरी है। इसके लिए हम उसी विश्वास और उत्साह की जरूरत होगी जो प्रथम प्रेरितों के पास था। जब हम उद्धारकर्ता और उसकी इच्छाओं के अध्ययन करते हैं हम उसे लोगों के पीछे शिक्षा देते प्रार्थना करते उठाते और चंगाई करते देखते हैं। जब हम ही उसकी नकल करते हैं और उनको कामों को करता हो जो हम उसे करते देखते हैं हम उस दर्शन का देखना शुरू करते हैं जो हम बन सकते हैं। अधिक भलाई करने के लिए आप पवित्र पवित्र आत्मा की मदद से अंतर्ज्ञान पाने के लिए आशित हो गए। मैं जानता हूँ कि अब हम अपने लिए वह दर्शन पाते हैं जैसा उद्धारकर्ता हमें देखना चाहते हैं, और उस दर्शन के अनुसार काम करते हैं हमारे जीवन अनपेक्षित तरीके से आशीष हो गए। मेरे माता पिता के दर्शन के कारण न केवल मेरा जीवन शैक्षणिक अनुभव के द्वारा बदल गया, लेकिन मैंने अपने आपको एक परिस्थितियों में रखा जहाँ मैंने सुसमाचार को पाया और अपनाया। अधिक महत्वपूर्ण मैंने भले और विश्वास माता पिता के महत्व के विषय में सीखा। संजीव तब मेरे जीवन हमेशा के लिए बदल गए। ठीक जैसे एक दर्शन मेरे माता पिता के अपने बच्चों के कल्याण के लिए उपवास और अर्थ प्रार्थना करने की और ले गए, और जैसे प्रथम प्रेरितों की दर्शन उन्हें उद्धारकर्ता के पीछे चलने की ओर ले गए, वही दर्शन हमें प्रेरणा देने और उसके अनुसार काम करने की मदद के लिए उपलब्ध है। भाइयों और बहनों, हम दर्शन और विश्वास और उस पर काम करने के लिए साहस के इतिहास वाले लोग हैं। देखें हम कहां आ पहुंचे और कितनी आशीष हमें मिली है। विश्वास करें कि वह आपके जीवन में दर्शन और उसके अनुसार काम करने के साहस से आशीषित कर सकता है। मैं आपकी उत्तरकर्ता और उसके पास हमारे लौटने की इसकी इच्छा की अपनी गवाही देती हूँ। मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरे जुआ सहज और मेरे बोझ हल्का है। ठीक है, जैसे उद्धारकर्ता ने आपने प्रथम चेलों में महान संभावना देखी थी, वैसे ही हम यहाँ हमारे अंदर भी दिखाता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
अब गायक मंडली और सभा गाकर मिलकर होप ऑफ इज़राइल गाएगी। गाने के अंत में हम सत्तर के एल्डर लैरी वाई विल्सन, डेविड एफ एवंस और पॉल बी पाइपर को सुनेंगे। उनके बाद 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर नील ए. निल्सन एंडरसन बोलेंगे।
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A month or so after we were married,
हमारी शादी के एक दिन महीने बाद मेरी पत्नी और मैं कार के एक लंबी यात्रा वह चल रही थी तेज चला रही थी और मैं आराम करने की कोशिश कर रहा था. मैंने इसलिए कहा कि मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि सड़क पर यात्रा कि गाड़ी के चलाने वाले को पकड़ने के लिए मशहूर थी और उन दिनों मेरी पत्नी को सबसे आगे निकलने का शौक था. मैंने उससे कहा तुम कार बहुत तेज चला रही हो, धीरे चलाओ. मेरी नई नई दुल्हन ने अपने मन में सोचा अच्छा मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और मैं गाड़ी चलाने सीखने वाले के सिवाय के चलाना आती हूँ. तो उसने जवाब दिया मैं गाड़ी कैसे चलाऊं यह बताना अधिकार तुम्हें कैसे मिला. ईमानदारी से मैंने उसके प्रश्न के लिए तैयार नहीं था. मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और मेरे पास पौरोहित्य है. भाइयों एक सलाह है, यदि आप कभी भी ऐसे परिस्थिति में हो तो यह सही जवाब नहीं है. और मुझे यह बताना में खुशी है कि केवल वही एक समय था जब मैंने ये गलती की थी. अनुबंध और सिद्धांत समझाते हैं कि घर में यह कभी भी पौरोहित्य का उपयोग करने के लिए अधिकार हमारे जीवन के धार्मिक से सही सीधा जुड़ा हुआ है. स्वर्ग की शक्तियां केवल धार्मिकता के सिद्धांतों पर नियंत्रित या संचालित कर सकती हैं. यह आगे कहते हैं कि इस शक्ति को खो देते हैं जब हम किसी प्रकार का अधार्मिक में दूसरों की आत्मा पर नियंत्रण करने या शासन करने या दबाव डालते हैं. यह धर्मशास्त्र बताते हैं कि हम धार्मिकता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन करना चाहिए. यह नियम गिरजा के सभी मार्गदर्शकों के साथ साथ घरों में पिता और माता पर लागू होते हैं. हम प्रभु की आत्मा के अपने अधिकार और परमेश्वर के अन्य अधिकार में हमें मिले हैं को खो देते हैं जब हम इसका उपयोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव डालने के लिए करते हैं. हम सोच सकते हैं कि यह तरीका उस व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन जब कभी हम किसी भी धार्मिकता के लिए दबाव डालते हैं जो अपने चुनने की सुंदरता का उपयोग कर सकता है और करना चाहता है, हम अधार्मिक काम कर रहे होते हैं. जब दूसरे के लिए सीमाएं तय करनी उचित होती हैं, हम दूसरों को सही काम करना बाध्य नहीं कर सकते. धर्मशास्त्र स्पष्ट है कि यह परमेश्वर का तरीका नहीं है. दबाव डालने से नाराजगी पैदा होती है, यह दुर्व्यवहार दिखाता है और इससे लोग अपने आप को अयोग्य समझते हैं. सीखने के मौके खो जाते हैं जब नियंत्रण करने वाले घमंडी होकर सोचते हैं. धर्मशास्त्र कहते हैं इस तरह धार्मिक अधार्मिक रूप से दबाव डालने लगभग सभी लोगों का स्वभाव और झुकाव होता है. तो हम ध्यान रखें कि इसमें फंसा आसान है. महिलाएं भी गलत दबाव डाल सकती हैं, लेकिन धर्मशास्त्र विशेष रूप से पुरुषों को कहते हैं गलत दबाव डालना के साथ अक्सर निरंतर आलोचना करना और असमर्थन या प्रेम का न होना होता है. समझदार माता पिता को जानने चाहिए कब बच्चे स्वयं के लिए जीवन के विशेष क्षेत्र में नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं. लेकिन यदि माता पिता नियंत्रण लेने के लिए अधिकार अपने पास रखते हैं और स्वयं की सही को उचित मानते हैं, वे अपने बच्चों के विकास और प्रगति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर देते हैं. हमारे घरों में बच्चे एक सीमित समय के लिए होते हैं. यदि हम उस दिन का इंतजार करें जब वो हमारे घर से निकलेंगे और माने कि वो अपने सुनने के स्वतंत्रता के अनुसार काम कर सकते हैं, तो ये हम गलत हैं. वे अचानक से उचित निर्णय लेने की योग्य को नहीं पा सकते यदि उन्हें कभी भी अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय हमारे घरों में रहते हुए नहीं लिए हैं. समझदार माता पिता अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं. वे उन्हें आत्मिक रूप से विकसित होने के लिए मौका देते हैं और हाँ, इसका मतलब यह है कि कभी कभी बच्चे गलती करेंगे और उनसे सीखेंगे। हमारे परिवार में एक घटना हुई जिसमें हमें बच्चों को चुनाव करने की उनकी योग्यता में मदद के बारे में सिखाया। उसकी टीम प्रतियोगिता तक पहुंची थी और खेल रविवार को होना था। किशोरी के रूप में मेरी कई सालों से सीखती आ रही थी कि सप्त का दिन आत्मिक कामों के लिए होता है, ना कि मजे मारने के लिए। उसने हमसे पूछा और हम कि उसे क्या करना चाहिए। हमने उसके साथ धर्मशास्त्र पढ़े और मेरी का प्रार्थना करने और उसके बारे में विचार करने के लिए कहा। उसने विचार किया। उसने अपना बताया कि वो उसके खेलेगी। अब हम क्या करते? आगे फिर चर्चा करने और आत्मा से समर्थन मिलने के बाद हमने वही किया जो हमने वादा किया था और उसे खेलने दिया। खेल के बाद मेरी अपनी माँ के पास आई। ओ माँ, उसने कहा, यह बहुत ही बुरा अनुभव था। मैं ऐसे फिर कभी नहीं महसूस करना चाहती हूँ। मैं सप्त के दिन आगे से कभी नहीं खेलूंगी। और उसने ऐसा ही किया। मेरी ने अब सप्त के दिन का पालन अपने करने के सिद्धांत को आंतरिक रूप से सीख लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों को अपनी चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग उचित रूप से करना और उन्हें प्रार्थना करना और उनके प्रार्थनाओं का जवाब सीखने जरूरी है। अपने परिवार को का पालन पोषण करने में हमने निश्चय किया था कि ताकि वे अपने खुद से प्रार्थना कर सकें। ब्रिगम ने कहा था, मुझे सभी कर्तव्यों में से चुनाव करना पड़े। मनुष्य के बच्चों को मैं सबसे पहले पाने के कर्तव्य को रखूंगा। मेरी जो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर अन्य पूर्व परिस्थितियों में मिल चुका था और इसलिए हम भरोसा था कि हमारी बेटी अपने जीवन में स्वर्ग के बातचीत के मार्ग को विकसित कर रही थी। इस प्रकार उसने अपने अनुभव से कुछ सकारात्मक सीखा और भविष्य में बेहतर चुनाव करने के लिए तैयार थी। आत्मा के साथ कड़ी के बिना बच्चे और माता पिता दोनों गलत निर्णय और उनके चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करने में नाम से उचित ठहराएंगे। गलत दबाव डालने और खुद प्रभाव यह होता है कि उसका परमेश्वर के प्रेम से भरोसा उठ सकता है। उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम और महसूस करने में कठिनाई होती है, जो कि उन्हें धार्मिकता के मार्ग से में समर्थन और उत्साह दे सकते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। यदि हम उनके स्वर्ग के बीच महत्वपूर्ण संबंध बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो हमें नम्र माता पिता और मार्गदर्शक बनना होगा। हमें केवल सलाह के द्वारा, सब्र के द्वारा, विनम्रता और कुलम्रता के द्वारा और सच्चे प्रेम द्वारा करना चाहिए। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग ने कहा है, नौजवानों को जो सहायता हम दे सकते हैं उनमें सबसे बड़ी है उन्हें हमारे भरोसे को महसूस करने देना कि वे परमेश्वर के पास जाने वाले मार्ग पर चल रहे हैं। जब हम उन सिद्धांतों पर विचार करते हैं जो हमें गिरजा में और घर में निर्देशन देते हैं, मैं अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन की अध्यक्षता आत्मिकता की एक घटना बताता हूँ। जब एन डेव मॉन्सन की बेटी आज तक इसे कहती है, जब वह घर जाती है तो उसके पिता कहते हैं, ओ देखो कौन आया, ये कितनी खूबसूरत है। वो कहती हैं, जब मैं घर जाती हूँ वो मुझे सुंदर बताते हैं, जब जैसे भी मैं दिख रही हूँ। मैं जब घर जाती हूँ मैं जानती हूँ कि मुझे प्यार करते हैं। मैं घर पर हूँ। भाइयों और बहनों, यह प्रभु का तरीका है। बेशक अतीत में आपके साथ गलत व्यवहार हुआ हो, मैं जानता हूँ प्रभु चाहते हैं कि आप उसके पास आएं। सभी से प्रेम किया जाता है, सभी का स्वागत है। ईसा मसीह के नाम में आमीन।
During this conference and in other
meetings, many of us have wondered, what can I do to help build up the world and see real growth where I live? In this and every other important endeavor, our most important work is to grow our home and family. It is the family that is established, and that is the real growth that occurs. We have to teach our children to teach the rules of Sushmacha. We have to help them in Yeshu Masih, and help them to prepare for 8 years and prepare for the baptism. We need to be faithful ourselves, so that we can see our love for the church. This is how children feel the independence. बच्चों को आज्ञा मदद पालने में मदद मिलेगी, परिवार को खुशी और सेवा करने में अभाव महसूस होगा। अपने घरों में नफी का नमूना के अनुसरण करना चाहिए। हम परिश्रम करते हैं अपने बच्चों को मनाने, मसीह पर विश्वास रखने, परमेश्वर से सहमत होने। हम मसीह के बारे में बात करते हैं, आनंद मनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी अनुसार लिखते हैं, ताकि हमारे बच्चे जान पाए कि उस किस तौर पर देखें पापों की राही के लिए। हम लेकिन परिश्रम करते हैं बच्चों को आशीष दिलाने, साथ गिरजे जाकर परिवार घरेलू संध्या करके मना के और नियुक्ति स्वीकार करके और दिखाते हैं अपना प्रेम उनके लिए। परिवारों घरेलू संध्या में पाठ मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के उनके और अपना प्यार बताते हैं और भाव गिरजे का बयान करते हैं। हम मसीह के बारे में लिख सकते हैं और बचावकों को खत लिख सकते हैं, उसमें हम मसीह के बारे में अपना बयान दे सकते हैं। उसमें स्मरण नायक कुछ होना चाहिए, कुछ छोटे ईमेल नहीं लिखने चाहिए। हमें अपने बच्चों के को मुक्तिदाता की क्षतिपूर्ति और माफी और प्रेम के बारे में सिखा सकते हैं, उन्हीं गुणों को उनके पोषण में इस्तेमाल करके। हमारा प्यार और माफी हमारे बच्चों को हमारे और करीब लाएगी और उनके विश्वास बढ़ाने में सहायता देगी। वो जानेंगे कि स्वर्गीय पिता उनसे प्यार करते हैं और वो उन्हें माफ करेंगे जैसे वो पछताते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। नफी ने सिखाया है कि हमें अपने भाइयों के मनाने से मसीह में विश्वास रखने और परमेश्वर से सहमत होने, यीशु मसीह की अनुवर्ती दिनों के संतों के गिरजे के सदस्य होने के नाते हम सभी के पास सुसमाचार फैलाने का आशीष और जिम्मेदारी है। कुछ है जिन्हें सुसमाचार की जरूरत है पर सभी गिरजे के सदस्य नहीं है। कुछ है जो हम पहले पहले शामिल थे, उन्हें फिर वो खुशी महसूस करने की जरूरत है, उन्हें पाई थी जो सुसमाचार स्वीकार करते हुए। उनकी स्थिति जो भी हो, हमारे स्वर्गीय पिता उनके बेटे और हमारे लिए प्रिय हैं। स्वर्गीय पिता और उसके बेटे के कार्य है उन सभी बच्चों को अमरता और शाश्वत जीवन दिलाना, उनकी स्थिति जो भी हो। अध्यक्ष मानसन ने बताया है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। वे कहते हैं हमारे बच्चों को अनुभव वर्तमान होने चाहिए, पुराने अनुभवों का स्मरण करना काफी नहीं है। स्वाभाविक और साधारण रूप से सुसमाचार अपने प्रियजनों को बताकर हमारा जीवन का कार्य और खुशी मिलेगी। देव ऑर्चर्ड सॉल्ट लेक सिटी में बड़ा हुआ, उसके काफी दोस्त गिरजे के सदस्य थे और गिरजे के नेताओं ने उसे काफी कार्यों में आमंत्रण दिया, लेकिन उसने तब गिरजा नहीं जोड़ा। लेकिन उसको बढ़ते हुए वो गिरजे से ताल्लुकात थे उसके, उसके बाद में कॉलेज जब गया वो तब उसके बहुत से दोस्त पचावक शिवा पे गए और उनका उन्होंने उसको एक हाई स्कूल का दोस्त मिशन पर नहीं गया तो वो डेव का रूममेट बन गया और उसकी बातें जो हुई उसमें उसने पता पड़ा कि डेव बिशप से बात कर रहा था ताकि वो योग्य बन पाए मिशन सेवा के लिए और उसने बिशप की ओर अपना आभार जताया. फिर उसने डेव से पूछा कि तू वो उसके साथ बिशप के साथ इंटरव्यू के लिए आने तैयार है या नहीं. एक ऐसा अनोखा निमंत्रण है पर उसके हालात और सिलसिले के संतुलन में यह स्वाभाविक और साधारण निमंत्रण था. डेव ने सहमति दी. जल्द ही बिशप ने खुद मिलने लगा वो और उसने सुसमाचार की सच्चाई की गवाही मिले. बपतिस्मे की तारीख पक्की हुई. बिशप ने डेव का बपतिस्मा किया और उसके बाद एक साल बाद उसके कैथरीन इवेंट्स के साथ मंदिर में शादी हुई. कैथरीन मेरी छोटी बेटी है, छोटी बहन है. मैं उस मित्र के लिए बहुत आभारी हूँ. डेव ने उसके परिवर्तन के बारे में जैसे बात की उसने पूछा क्या उस परिश्रम का कोई मूल्य था. दोस्तों ने युवा नेताओं ने बिशप ने इतने सालों से प्रयास के बाद एक बपतिस्मा होगा क्या वो मूल्यवान था. कैथरीन और पांच बच्चों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरे पांच बच्चों के लिए मेरा जवाब हाँ है. जब भी सुसमाचार बांटा जाता है वो कभी मित्र एक लड़का नहीं होता. जब कभी परिवर्तन होता है सारी परिवार का बचाया जाता है. जैसे डेव और कैथरीन के बच्चे बड़े हुए उन्होंने सुसमाचार स्वीकार किया. एक बेटी और दो बेटों ने पचारक सेवा की और एक पचारक सेवा की नियुक्ति मिली है. दो बड़े बच्चे मंदिर में शादी की हुई है उनकी. क्या ये मूल्यवान था. सिस्टर आइलीन वेट उसी कॉन्फ्रेंस में जिसमें डेव ने बात की उपस्थित थे. कॉन्फ्रेंस में वह अपनी बहन के बारे में सोच रही थी जो गुजे में नहीं आ रही थी. उसका तलाक हो चुका था. उसके चार बच्चे थे. एलिन प्रभावित हुई कि वो एल्डर बैलेट की किताब उसे भेज दे और अपना बयान उसे लिखकर दे. अगले हफ्ते उसके और एक दोस्त ने कहा कि उसे भी प्रेरणा मिली थी कि मिशेल को अपना एक खत लिखकर उसे अपना बयान दे. ये दिलचस्प बात नहीं है कि अक्सर आत्मा कई लोगों को एक व्यक्ति को मदद करने भेजती है. समय बीता. मिशेल ने एलिन को फोन करके पुस्तक के लिए धन्यवाद दिया. उसने कहा कि वो जीवन आत्मिक खोखलापन महसूस कर रही थी. एलिन ने उसे कहा कि सुसमाचार से वो आराम पा सकती है. मिशेल ने परिवर्तन किए. सुन जल्दी उसने एक पुरुष से मिली जिसके साथ उसने शादी कर ली और उसके 24 साल का बेटे का भी बपतिस्मा हुआ. मैं बाकी परिवार को भी आमंत्रण देता हूं कि आप सुसमाचार सुनिए और प्रार्थना पूर्वक सोचिए कि ये सच्चा है या नहीं. और मैं बयान देता हूं कि ये सच्चा है. जब तुम ये जानोगे कि वो सच्चा है तुम भी बपतिस्मा लेके हमारे साथ शामिल हो जाओ. इस कहानी के अंत अभी लिखा नहीं गया है क्योंकि जो उनसे उससे प्यार मिशेल से प्यार करते थे उन्होंने प्रेरणा पर कार्य किया. मैंने इन दो अनुभवों के बारे में बहुत सोचा है. एक जवान लड़का अपना जिंदगी सही करना चाहता था ताकि वो मिशन सेवा पर जा पाए और दूसरी औरत ने प्रेरणा मिली और उसने उसको पर कार्य किया और उस वजह से उसकी बहन वापस जो 20 साल से सुसमाचार से जुदा थी वो वापस लौटी. जैसे हम प्रेरणा के जवाब में कार्य करेंगे वैसे स्वर्गीय पिता भी हमारी मदद करेगा। हमें साधारण और स्वाभाविक रूप से सुसमाचार बांटने की कोशिश करनी चाहिए। एलिन वर्ल्ड जैसा अगर अनुभव हुआ तो हमें भी उसे देव नहीं बट जब प्रेरणा मिलती है तभी उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। मेरा आमंत्रण है कि जब आपको प्रेरणा मिले तो प्रार्थना करें और एक साधारण और सामान्य तरीके से किसी को आमंत्रण दीजिए। मैं प्रधान मॉनसन की काउंसिल की देता हूं कि कभी भी कोई प्रेरणा मिले तो उसको हटाओ नहीं पर तुरंत उस पर कार्य करो और उससे तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, हम उसका गिरजा बढ़ा सकते हैं और सुसमाचार के आशीष दूसरों को दे सकते हैं। ये स्वर्गीय पिता का कार्य है। मैं मुझे पता है कि वो जीवित है और वो प्रार्थना का जवाब देता है और जैसे हम प्रेरणा पर कार्य करते हैं वो हमें चमत्कार दिखा सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं। ईसा मसीह के नाम से आमेन।
मसीह से लगभग 1500 साल पहले एक चरवाहा होरब पर्वत की ढलान में जलती झाड़ियों के निकट गया था। उस आकस्मिक सूर्य पेट ने मूसा के चारवाहे से एक भविष्यवक्ता बना दिया और उसका काम भेड़ों के एकत्रित करने के स्थान पर इसराइल को एकत्रित करने हो गया। 1300 साल बाद एक विशेष याजक राजा के दरबार में दंडित भविष्यवक्ता की गवाही से मोहित हुआ। उस आकस्मिक भेंट ने अल्मा के नागरिक सेवक से परमेश्वर का सेवक में और उसका ध्यान पद पाने से हटाकर पद मात्र सेवा करने में बदल दिया। लगभग 2000 साल पश्चात एक 14 साल का बालक अपने गंभीर प्रश्न का जवाब पाने के लिए जंगल में गया। जोसेफ स्मिथ की उपवन में आकस्मिक भेंट ने उसे भविष्यवक्ता होने की और उन पुनर्स्थापना की मार्ग खड़ा कर दिया। मूसा, आल्मा और जोसेफ स्मिथ की जीवन आकस्मिक सूर्य भेंट के साथ बदल गए थे। इन अनुभवों ने उन्हें प्रभु और उसके काम के अत्याधिक विरोध और कठिन परीक्षाओं के बावजूद उन्हें जीवन पर विश्वास बने रहने की मजबूती दी। हो सकते हैं हमारे ईश्वरीय अनुभव उतने प्रत्यक्ष या नाटकीय नहीं हो, नहीं हमारी चुनौतियां इतनी खतरनाक न हो सकती है। फिर भी जैसे भविष्य वक्ताओं के साथ होता, अंत तक धीरज धरने कि हमारी ताकत हमारी ईश्वरीय आकस्मिक भेंट के द्वारा हमें मिली पवित्र गवाही को पहचानने, याद रखने और थाम रखने में मिलती है। आज अधिकार कुंजिया और धर्मविधियां को पृथ्वी पर पुनर्स्थापित किया गया है। धर्मशास्त्र और विशेष गवाही भी है। जो चाहते हैं उन्हें पापों से क्षमा के लिए बपतिस्मा और हाथों के रखने से अग्नि का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा मिल सकता है। इन पुनर्स्थापित उपहारों को पाने के बाद हमारी ईश्वरीय आकस्मिक भेंट में प्राय परमेश्वरत्व का तीसरा सदस्य पवित्र आत्मा शामिल होता है। शांति धीमी आवाज से आत्मा मुझ से बोलती है, मेरा मार्गदर्शन करती, सभी बुराई से मुझे बचाने के लिए ये बुझाई देखती है। पवित्र आत्मा मेरे मार्गदर्शन करे, वो हमें सिखाए जो सच है, वो मसीह का गवाही देगा, हमारे मनों में स्वर्ग का दर्शन उज्जवल होगा। जब हम प्रकाश और सच्चाई की खोज करते हैं, हमें अपने आत्मा को में शांत धीमी आवाज के फुसफुसाते महसूस करते हैं। यह अनुभूतियां प्रभाव इतने प्राकृतिक और सूक्ष्म होती हैं कि हम इन्हें अनदेखा कर सकता है या इन्हें विचार सहज ज्ञान ठहरा सकते हैं। प्रतिदिन उन प्रभावों पर विचार करना और लिखना जो आत्मा से मिलते हैं, ईश्वरीय के साथ हमारी व्यक्तिगत भेदभाव पहचानने में हमारी मदद है। उनके हमारे लिए और हमारे वंशज के लिए संभाल कर रखने का दो उद्देश्य की पूरा करते हैं। उन्हें लिखना परमेश्वर के लिए हमारे आभार एक औपचारिक अभिव्यक्ति हो, क्योंकि कोई मनुष्य किसी काम से परमेश्वर का उतना अपमान नहीं करता। यह किसी पर उसका क्रोध उतना नहीं भड़कता सिवाय जिस उसके जो हर काम में उसके हाथ को स्वीकार नहीं करता।
उसके संदर्भ में जो हमें आत्मा से मिलता है, प्रभु कहता है स्मरण रहे कि जो स्वर्ग से आता है वो पवित्र है। उसका यह कथन चेतावनी से अधिक है। यह एक परिभाषा और एक व्याख्या भी है। स्वर्ग से मिला प्रकाश और ज्ञान पवित्र है। यह पवित्र है क्योंकि इसका स्रोत स्वर्ग है। पवित्र का मतलब है श्रद्धा और आधार के योग्य। किसी बात को पवित्र की श्रेणी में रखकर प्रभु संकेत देता है कि यह उच्च मूल्य का और अन्य बातों से बढ़कर है। पवित्र बातों के साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। अधिक सम्मान देकर और गहन सत्कार के साथ स्वर्गीय मूल्यों की श्रेणी में पवित्रता उच्च है। वो जो कि परमेश्वर के लिए पवित्र है, हमारे लिए पवित्र केवल चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करने से बनती है। प्रत्येक को उसे पवित्र स्वीकार करना और मनाना चाहिए जिसे परमेश्वर पवित्र ठहराता है। वह स्वर्ग से प्रकाश और ज्ञान भेजता है। वह इसे स्वीकार करने और पवित्र मानने का निमंत्रण देता है। लेकिन सब बातों में विरोध होता है। पवित्र का विरोध करना पाप या लौकिक है जो कि नाशवान व संसारिक है। संसारिक बात उसके साथ निरंतर मुकाबला करती है जो हमारी नजर और प्राथमिकता में पवित्र है। संसारिकता का ज्ञान हमारे प्रतिदिन के नाशवान जीवन के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त प्रभु हमें उत्तम पुस्तकों के अध्ययन करने और ज्ञान पर पाने और भाषाओं बोलियों और लोगों के परिचित होने के लिए निर्देशन देता है। इस प्रकार पवित्रता और संसारिकता का चुनाव तुलनात्मक प्राथमिकता और चुनाव है, अद्वितीय के नहीं। बुद्धिमान होना तब ठीक होता यदि जब हम परमेश्वर की सलाह पर ध्यान देते। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्राथमिकता के लिए पवित्र और लौकिक के बीच में युद्ध को जलती हुई झाड़ी पर मूसा के अनुभव से चित्रित किया जा सकता है। वह मूसा ने यहोवा से इसराइल के बच्चों को गुलामी या मुक्त करने के लिए पवित्र नियुक्ति को प्राप्त किया था। हालांकि पहले मिस्री शक्ति और फिरौन के उसके सांसारिक ज्ञान के कारण उसने संदेह किया। अंततः मूसा ने प्रभु के शब्द पर विश्वास किया, आपने लौकिक ज्ञान को वश में किया और पवित्र में भरोसा किया। उस भरोसे ने सांसारिक परीक्षा पर विजय पाने की शक्ति उसे दी और इसराइल के मिस्र से बाहर निकाला। नूह की सेना के वच निकालने के बाद अमूलन के साथ गुलाम बनने पर अल्मा उस आत्मिक अभाई पर संदेह कर सकता था जो उसने अविनती से सुना था। फिर भी उसने पवित्र पर भरोसा किया और उसने सहने और अपनी अस्थायी परीक्षाओं से भाग निकलने के लिए ताकत दी गई। मर्मन की पुस्तक का अनुवाद करते हुए आरंभ के दिन में जोसेफ स्मिथ ने दुविधा का सामना किया। वह पट्टियों और अनुवाद के काम की पवित्र प्रकृति को जानता था। फिर भी पवित्र निर्देशनों की महत्व देने के स्थान पर वह मार्टिन हैरिस द्वारा सांसारिक चीज मित्रता और धन का प्राथमिकता देने के लिए उकसाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवाद की हस्तलिपियों खो गई। प्रभु ने जोसेफ को जो पवित्र था उसे दुष्ट को देने के लिए फटकारा और उसे कुछ समय के लिए पट्टियों से और अनुवाद के उपहार से वंचित कर दिया। जब जोसेफ की प्राथमिकता का उचित रूप से स्थापित हो गई, पवित्र बातें फिर से दे दी गई और अनुवाद का काम शुरू हुआ। मार्मन की पुस्तक पवित्रता को प्राथमिकता देने के संघर्ष के अन्य उदाहरण की बताती है। वह उन विश्वासियों के बारे में बताती है जिनका विश्वास उन्हें पवित्र फल परमेश्वर के प्रेम को खाने के लिए जीवन के वृक्ष को और ले गया था। फिर उस विशाल और बड़े भवन के उपहास ने विश्वासियों की पवित्रता को लौकिकता और मोड़ दिया। बाद में नफाटियों ने घमन का चुना और भविष्यवाणी और प्रकटीकरण के आत्मा को स्वीकार किया, उसका मजाक उड़ाया जो पवित्र था। यहाँ तक कि प्रभु के जन्म के संबंध में संकेत और चमत्कार के चश्मदीद गवाहों ने स्वर्ग से मिली पवित्र गवाही को लौकिक व्याख्या के पक्ष में अस्वीकार किया था। आज संघर्ष जारी है। लौकिक मत मात्रा और प्रबलता में बढ़ रही है। संसार में पवित्र बातों का बहुत अधिक उपहास किया जा रहा है और विश्वासियों के इसका त्याग करने को कहा जाता है, क्योंकि हम दर्पण में धुंधला से दिखता है और हम सब बातों के अर्थ नहीं जानते। हम कई बार हमें मिली पवित्र गवाही को त्यागने या अनदेखा करने के लालच में पड़ सकते हैं, जो जब हम संसार के चुनौतियों का सामना करता है, हम महसूस कर सकते हैं कि हमें अधिक आत्मिक शासन की जरूरत है। उस उस परिस्थिति में ओलिवर काउडी का याद दिला जाता है। यदि तुम्हें इसका अलावा गवाह चाहिए, अपने मन में उस रात के बारे में सोचो जब तुमने अपने हृदय से पुकारा कि तुम इन बातों के संबंध में सच्चाई जान सको। इस विषय के संबंध में क्या मैंने तुम्हारे के शांत नहीं किया था? तुम्हें परमेश्वर से इससे और बड़ सबूत क्या चाहिए? आपने से पहले मूसा, अल्मा और जोसेफ के सामने ओलिवर के पवित्र बातों में भरोसा करने और उन्हें थामे रखने को जो कहा था, जो उसने मिल चुकी थी और आश्वासन दिया गया कि परमेश्वर को और से थी। पवित्र को चुनकर उसका अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वो पवित्र बातों के लापरवाही से लेने के चुनाव करते हैं, उनके मन के अंधकार होगा और जब तब की पश्चाताप नहीं करेंगे, उनसे प्रकाश लिया जाएगा। पवित्र बातों पर भरोसा न करने पर वो आपके नैतिकता रूप में दिशाहीन पाएंगे। कि जो परमेश्वर का है वो प्रकाश है और वो प्रकाश पाता है और परमेश्वर को काम करता और बहुत अधिक प्रकाश पाता है और वह प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तब तक परिपूर्ण दिन नहीं आ जाता। खास प्रभु हमें जो स्वर्ग में से मिली है वो हमेशा उन पवित्र बातों की पहचानने, याद रखने और थामे रहने का आशीष मिले। मैं गवाही देता हूँ जब हम ऐसा करते हैं, हमें परीक्षाओं का अंत तक सामना करने और हमारे समय को चुनौतियों पर विजय पाने का शक्ति मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
A reporter from a leading
का एक प्रमुख पत्रकार ने के पत्रकार ने समाचार लेख की तैयारी करने के लिए गिरजा का अध्ययन किया। उसने हमारे सिद्धांत की जांच की और विचार प्रचारक परीक्षण और परोपकार ई केंद्रों में गया। मेरे साथ साक्षात्कार में पत्रकार ने मुझसे पूछा, कोई कैसे सोच सकता है कि आप ईसाई नहीं हैं? मैं जानता था कि वह गिरजे के विषय में बात कर रहा था, लेकिन मेरे प्रश्न को व्यक्तिगत रूप से लिया और मैंने अपने आप से पूछा, क्या मेरा जीवन प्रेम और परम प्रकट होती है जिसे मैं उद्धारकर्ता के लिए महसूस करता हूँ? यीशु ने फारसियों से पूछा, तुम मसीह के विषय में क्या समझते हो? अंतिम नियम में असल में, जैसे पौलुस ने कहा, मैं सबसे मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा। उस दिन प्रश्न होगा, मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? यद्यपि वह पूरी मानव जाति से प्रेम करता है, फिर भी मसीह ने चेतावनी दी देने के लिए कुछ लोगों को कपटी, मूर्ख और कुकर्म करने वाले कहा। मसीह ने असमत होकर को कुछ अंधा, फल न लाने वाले बताया, धर्म के भूखे और प्यासे कहा, और इसलिए हम सब पूछते हैं, मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अध्यक्ष मॉनसन ने बताया है कि हमारा संसार उन बातों से भटक रहा है जो आत्मिक हैं। हमारे आसपास का वातावरण बदल रहा है और समाज के नैतिक मूल्य हमारी आंखों के सामने से नष्ट हो रहे हैं। इस समय मसीह और उसकी शिक्षाओं के प्रति अविश्वास और अनादर बढ़ता जा रहा है। इस अशांति के वातावरण में हम मसीह के चेले होने में आनंदित होते हैं। हम अपने चारों ओर प्रभु का प्रभाव देखते हैं। हमारी मंजिल को हमारे सामने बहुत ही सुंदरता से रखा गया है। यह जीवन अनंत है। मसीह ने प्रार्थना की थी कि वे आपको सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को इसे अपने भेजा है जाने। आजकल के समय में चलने होना अनंत तक सामन का बिल्ला पाने के समान है। जब हमने आत्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए दोनों दो दिन के दौरान सुना, जब हम अपने आने वाले दिनों में इन संदेशों को पढ़ते और प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें व्यक्तिगत निर्देशन पाने के आशीष देंगे। यह अनुभूतियां हमें पश्चाताप, आज्ञा पालन, विश्वास और भरोसा करते हुए परमेश्वर के निकट ले जाती हैं। उद्धारकर्ता हमारे विश्वास के कामों का जवाब देते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उसे प्रेम करेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यीशु की बुलावट, मेरे पीछे आओ, केवल उनके लिए ही नहीं, इस आत्मिक में भाग लेने के लिए। चेले बनने की यात्रा कोई तेज दौड़ या मैराथन की लंबी दौड़ नहीं है, यह जीवन भर लिस्टाइल संसार की और चलते जाने हैं। यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे आओ। हम प्रतिदिन बहुत अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन यदि हम प्रयास करते हैं तो यीशु का नियंत्रण उत्साह और आशा देते हैं। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम मिलकर एक दूसरे को आने वाले महान और महत्वपूर्ण दिनों के लिए सहारा और हिम्मत दे सकते हैं। हम चाहें किसी भी कठिनाई को का सामना कर रहे हो, कोई भी कमजोरी हमें रोक रही हो या असंभावनाएं हमारे चारों ओर हो, आओ हम परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखें। मैं आपसे चेले होने के दो प्रभावशाली उदाहरण देता हूँ। लगभग 20 वर्ष पहले अध्यक्ष मॉन्सन ने जनरल कॉन्फ्रेंस में 12 साल की लकड़ी एक विषय में बोला था जो कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने उसके साहस और उसे टीम पनोगस की पर्वत पर उठाकर ले जाने में उसके दोस्तों की दया के विषय में बताया था। कुछ साल पहले जामी पीटर ब्रिटन से मैं मिला और इस कहानी का दूसरा पहलू सुना। जामी अध्यक्ष मॉन्सन से मार्च 1993 में मिली थी। जिस दिन उसे उसके दाएं घुटने के ऊपर हड्डी का कैंसर के विषय में पता चला था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, यीशु तुम्हारे दाएं और तुम्हारे बाएं ओर पर तुम्हें संभालेगा। उनके ऑफिस से जाते समय जामी ने बताया, मैंने अपनी व्हीलचेयर से एक गुब्बारा खोलकर उन्हें दिया था, तुम सबसे हो, उस पर लिखा हुआ था। कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के दौरान अध्यक्ष मॉन्सन ने उन्हें भूला नहीं था। उन्हें मुझे देखा और महान अनंत आशा की ओर उठाया था। उस पहली भेंट के 3 साल बाद जामी फिर से अध्यक्ष मॉन्सन के ऑफिस में बैठी। जब वह उनके ऑफिस से जाने लगी तो उन्होंने उसे वही गुब्बारा दिया जो उसने पहले दिया था। यह जानते हुए कि जब वह कैंसर से ठीक हो जाएगी वह उनके ऑफिस आएगी, उन्होंने उस गुब्बारे को संभाल कर कहा, उनकी पहली भेंट के 14 साल बाद अध्यक्ष मॉन्सन ने जामी पामर और जेसन ब्रिटन की शादी सॉल्ट लेक मंदिर में की थी। हम अध्यक्ष मॉन्सन के विशेषता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वह अक्सर जनरल अधिकारियों और को सरल प्रश्न को याद रखने के लिए कहते हैं, यीशु क्या करते। यीशु ने आधारणालय में मार्गदर्शक को कहा था, डर मत, केवल विश्वास कर। हाल में ही मैं एक ऐसे परिवार से मिला जो हमें उनके कैसे विश्वास रखना चाहिए कि सुंदर उदाहरण हैं। ओल्गन और सेलीन सेंटेलिस, जिसके हेती के पोर्टो प्रिंस से हैं, ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। 12 जनवरी 2010 के ओनगन काम पर था और सोलीन गिरजा में थी जब विनाशकारी भूकंप आया था। उनके तीन बच्चे, 5 साल का गंसी, 3 साल की एंजी और 1 साल का गंसली एक मित्र के साथ उनके घर में थे। उनके बच्चे घर में ही थे जब भूकंप आया था और उनका घर बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। बच्चे निकल नहीं पाए थे। उस इमारत के लिए कोई बचाव कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें उसकी कोई बचाने की कोई आशा नहीं थी। ओल्गन और सेलीन ने पूरे समय की प्रचार सेवा में की थी और दोनों का विवाह में मंदिर हुआ था। उद्धारकर्ता ने उनको वादे में विश्वास करते थे, फिर भी उनका हृदय टूट चुका था। वे फूट फूट कर रोने लगे थे। ओल्गन ने मुझे बताया कि अपने निराशाजनक क्षणों में उसने प्रार्थना आरंभ की थी, स्वर्गीय पिता, अगर आपकी इच्छा हो, कम से कम मेरा एक बच्चा ही जीवित बच जाए। वह बार बार इमारत के चारों ओर घूम रहा था और प्रार्थना कर रहा था। पड़ोसियों ने आकर उनकी मदद की थी और उनके आशा उन्हें संभाल रहे थे। ओल्गन ने इस इमारत में मलगे के चारों ओर प्रार्थना करते हुए चक्कर लगा रहा था। घंटों तक पड़ोसी अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार मलबे को देख रहे थे। उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई दी जो उसके बच्चे की थी। रात के अंधेरे में हथौड़ों से की आवाज में वह उस आवाज को सुन रहे थे। जो उन्होंने सुना, उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक छोटे बच्चे की आवाज थी और वह गा रहा था। बाद में 5 साल की गंसी ने बताया कि उसे विश्वास था कि अगर वो गाना गाएगा तो उसके पिता उसे ढूंढ लेंगे थे। वह गा रहा था, "I am a child of God." घंटों बीते जिन्हें पर परमेश्वर के कोई बहुमूल्य बेटों और बेटियों की मृत्यु की निराशा और अंधकार के बीच सेंतलिस परिवार के साथ चमत्कार हुआ था। गंसी एंजी और गंसली इमारत के ढेर से जीवित निकल आए थे। चमत्कार हमेशा इतनी जल्दी नहीं होते हैं। कभी कभी हम संदेह करते हैं कि वह चमत्कार जिसके लिए हमने इतनी गंभीरता से प्रार्थना की है, यह और अभी क्यों नहीं होता। लेकिन जब हम उद्धारकर्ता में विश्वास करते हैं, वादा किया गया चमत्कार होता है, चाहे इस जीवन में या आने वाले जीवन में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धारकर्ता ने घोषणा की है, तुम्हारे मन में घबराए मन न घबराए और न डरे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं गवाही देता हूँ, जब उनसे प्रेम करते हैं, उनमें भरोसा रखते हैं और उनके पीछे चलते हैं, आप उनके प्रेम और सहमति को महसूस करेंगे। मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जानेंगे कि आप उनके चेले हैं, आप उनके मित्र हैं। अपने अनुग्रह से वे आपके लिए वह करेंगे जो आप अपने आपके लिए नहीं कर सकते। हम उत्सुकता से हमारे प्रिय भविष्यवक्ता के समापन संदेश को सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन उस समय प्रभु ईसा मसीह के प्रेरित नियुक्त हुए थे जब वो मैं 12 साल का था। 48 साल से भी अधिक समय से हम उन्हें यीशु मसीह की गवाही देते हुए सुन रहे हैं। यीशु मसीह के बहुत से
I testify that he now stands as the Savior's senior apostle upon the earth.
यीशु मसीह का गिरजा घर जैसे उसने अतीत में स्थापित किया था स्वर्ग की शक्ति धर्म विधियों और आशीषों के साथ पुनः स्थापित किया गया। मन की पुस्तक यीशु मसीह की कहानी गवाही है। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है। उन्होंने हमारे पापों के लिए खुद सहा और मेरे गए और तीसरे दिन उठे। भविष्य में प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक जवान कबूल करेगी कि वे ही मसीहा हैं। क्या अन्य लोग मुझे ईसाई मानते हैं? उस समय हमारी आंखें उस पर केंद्रित होंगी और हमारी आत्माएं एक प्रश्न पर जुड़ी होंगी, मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वे जीवित हैं, मैं यह गवाही देता हूं कि ईसा मसीह जीवित हैं। मैं यह गवाही देता हूं ईसा मसीह के नाम में। आमीन।
Brothers and sisters, it will now be our privilege
अब हमारा प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन से सुनने का हमारा सौभाग्य होगा। अपेक्ष मॉन्सन के संदेश के बाद गायक मंडली गाएगी आई नीड दिन एवरी आवर गाकर वो इस सम्मेलन की समाप्ति करेगी। उसके बाद संपादन प्रार्थना सत्र के एल्डर जावियो मगाजदवी करेंगे। President Monson.
My heart is full.
मेरा दिल भर उठा है जैसे हम इस शानदार सम्मेलन के समाप्त कर रहे हैं। हमें बहुमूल्य आदेश मिले हैं। ये बिल्डिंग में पूरी भर गई है, एक भी सीट बाकी नहीं है। हमें बहुमूल्य आशीष मिले हैं जैसे हमने वक्ताओं के सलाह और बयान सुने हैं। मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि प्रभु की आत्मा महसूस की है जैसे हमने हमारे दिल पर प्रभाव पड़ा है। अब हमने बयान हमारे बयान मजबूत हुए हैं। एक बार फिर हम इस मधुर संगीत का आनंद लिया है। इससे सम्मेलन के हर सत्र बढ़िया और समृद्ध बना है। मैं इनको आभार देता हूँ अपनी प्रतिभा तुम्हारे साथ बांटने के लिए। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारा संबोधन किया और उन्होंने जिन्होंने प्रत्येक सत्र में प्रार्थना दी। अनगिनत व्यक्तियों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप में सम्मेलन में मेहनत की है, उनके सहायता के बिना इन सत्रों को पाना हमारे लिए असंभव था। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर उन भाइयों और बहनों को गहरा आभार व्यक्त करोगे जिन्होंने इस सम्मेलन में सम्मान हमने रिलीज किया है। हम उन्हें याद करेंगे। प्रभु के कार्य के प्रति उनका विशाल योगदान पीढ़ियों तक हम महसूस करेंगे। हमने हाथ उठाकर भाइयों और बहनों को समर्थन दिया है जिन्होंने नई पदे को नियुक्त किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि स्वामी के कार्य में हम उनके साथ सेवा करने उत्सुक हैं। उन्हें स्वर्ग की प्रेरणा द्वारा नियुक्त किया गया है। इस सम्मेलन का अभूतपूर्व प्रसारण हुआ है द्वीपों और सागरों के पार के लोगों तक पहुंचा हुआ है हम इतनी भाग्यवान हम कितने भाग्यवान हैं मेरे भाइयों और बहनों यीशु मसीह का बेहाल गिरजा हमारे जीवनों और दिलों में है ये जीवन के महान सवालों का उत्तर देता है हमारे जीवनों में मायने और आदेश लाता है उद्देश्य लाता है हम अशांत समय में रहते हैं मैं आश्वासन देता हूँ कि स्वर्गीय पिता हमारी चुनौतियों को जानता है वो हर एक के से प्यार करता है और आशीष और सहायता देना चाहता है हम उसे प्रार्थना में पुकार करके प्रार्थना में पुकार जैसे उस अपने सलाह दी है जब उसने कहा हमेशा प्रार्थना करो और अपनी आत्मा तुम पर बहा दूंगा तुम दुनिया की तजोरियों से ज्यादा आशीष मिल पाओगे मेरे भाइयों और बहनों तुम्हारे घर प्यार और शालीनता से भर जाएं और प्रभु की आत्मा से परिवारों से प्यार करो अगर आपस में याचना हो तो उसे दूर करो मसीह ने कहा है तुम्हें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई वाद विवाद की भावना रखता है वो मेरा नहीं है परंतु शैतान का है जो कलह का जन्म रहता है और जो लोगों के हृदय को एक दूसरे के से लड़ने भड़काता है सुनो लोगों ये मेरा सिद्धांत नहीं है मेरा सिद्धांत है कि ऐसी बातों से दूर रहना आपके विनम्र सेवक के रूप में राजा बेंजामिन के शब्दों को दोहराता हूँ जो उसने अपने लोगों से कहे थे मैंने तुम्हें यहाँ आज्ञा यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं नश्वर मनुष्य से ज्यादा हूँ पर मैं तुम्हारे जैसा शरीर में और बुद्धि में दुबलता है पर फिर भी मैं इन लोगों द्वारा चुना गया हूँ प्रभु के हाथ द्वारा और मैं उनकी अनुपम शक्ति और के द्वारा तुम्हारी सेवा अपने पूरे बल बुद्धि और प्रभु के द्वारा दी गई क्षमता से करने के लिए सुरक्षित रखा गया है मेरे भाइयों बहनों मैं अपने समर्पण हृदय से परमेश्वर की मर्जी पूरी करने की अब उसकी सेवा करने की इच्छा प्रकट करता हूँ अब जब यह सम्मेलन को विदा करते हैं मैं आपसे हर एक के लिए स्वर्ग से आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ बिल्डिंग पूरी इमारत भर गई है तुम सुरक्षित घर पहुँचो तुमने सुनी हुई सच्चाइयों का तुम चिंतन करो और दो दिन पहले सम्मेलन से और बेहतर बन जाओ जब तक हम फिर 6 महीने में मिलेंगे प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे पास रहे हम सब पर भी और ये उसके पवित्र नाम में कहता हूँ ईसा मसीह हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता आमेन
Oh, Father,
which art in heaven.
At this moment,
at the closing of this wonderful conference,
we meekly,
और पूरे दिल से अपने आपको आपके सामने झुकाते हैं और इस सिखावट के लिए हम आभारी हैं जो हमने यहाँ पाए हैं हम पिता जैसे हम निकलते हैं यहाँ से और हमारे घर निकलते हैं कि हम ये सिखावट अपने साथ ले जाएं और उसका जिंदगी में उपयोग करें
और
अपने परिवारों को शुद्ध बनाएं
और
उन सभी को हम आशीष दें जो हमारे साथ हैं और हमें आशीर्वाद दो कि हम सुरक्षित पहुंचे जहां भी जाना हो हम शुक्रिया अदा करते हैं यहां पे पैगंबरों के साथ रहने के लिए हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं उसके पवित्र नाम में ईसा मसीह आमेन
This has been a broadcast of the
अंतिम दिनों का संपर्क यीशु मसीह के गिरजे का 182वां जनरल सम्मेलन था इसमें गिरजे के जनरल अधिकारी और जनरल पदाधिकारी में से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया और इस सत्र का संगीत मंडप का एक मंडली द्वारा दिया गया था यह प्रसारण बोनाबिल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया गया बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है